نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ سورہ عنکبوت ہے، مکی سورت ہے، اور یہ ابتدائی دور کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. لگ بھگ چوتھے یا پانچویں سال میں نبوت کے اس کا نزول ہوا. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو شروع میں تو آپ پر پھپتیاں چست کی گئیں، آپ کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر جب یہ دیکھا گیا کہ آپ کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان اور غلاموں کے طبقے میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو بھی طعن و تشنیع، بلکہ فزیکلی بھی ان پر تشدد شروع ہو گیا، اور ہر دو طرح کی ٹیکنیکس ان کے لیے استعمال کی گئیں. یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کیرٹ اینڈ سٹک، یعنی مار پیٹ بھی ہوئی اور پھر ٹیمپٹ بھی کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو تم ہمارے تابع ہو، ہمارے بچے ہو، ہم دنیا میں تمہیں بچاتے ہیں آفتوں سے، پریشانیوں سے، چلو اگر کوئی آخرت ہوئی بھی تو وہاں پر بھی ہم تمہیں بچا لے جائیں گے. تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آزمائش ضرور آتی ہے، اور قانون زیست یہی ہے کہ یہاں پہ آزمائش آتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ہمارے پیغمبروں کے ساتھی ہوتے ہیں، جو دین کی شہادت، اللہ کے دین کی گواہی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، ان پر تکلیفیں ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی راہ یاب ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جو دین کے مخالفین ہیں، پیغمبروں کو ستانے والے ہیں، وہ غالب آ رہے ہیں، لیکن انجام کار کے طور پر اس دنیا میں بھی رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان ہی غالب آتے ہیں. اور پھر اس بات کو انڈوس کرنے کے لیے پرانے رسولوں کے کچھ تذکرے ہیں کہ جس میں یہی داستان جو ہے وہ دہرائی گئی ہے تاریخ میں بارہا. تو الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے. ولقد فتن الذین من قبلہم، اور ہم نے جانچا ہے، ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس بات کو آشکار کر کے رہیں گے، ظاہر کر کے رہیں گے کہ کون ہیں کہ جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں. آگے آئے گی آیت کہ کون ہیں جو مومن ہیں اور کون ہیں جو منافق ہیں. تو مومنین کون ہیں؟ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، اور اہل ایمان میں ایسے جوان مرد بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا، اور کچھ جھوٹے لوگ ہیں، جعلی لوگ ہیں. تو اگر حالات ایک جیسے رہیں، مزے رہیں پیغمبروں کو ماننے والوں کے، تو پھر تو ہر آدمی ساتھی بن جائے گا حق کا اور پیغمبر کا. لیکن کہا کہ یہ دشواریاں آتی ہیں، اور اس میں آزمائشیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. صرف آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ فزیکلی مار پڑ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، زیادہ بڑی چیزیں نفسیاتی ہوتی ہیں، وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کو ستانے والے ہیں، بتوں کو ماننے والے ہیں، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ایمانی طور پہ بھی بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، یہ ہو کر رہے گا، ہم جانچ کے رہیں گے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اب یہ بات واضح کر دی کہ ہم جانچتے تو ہیں، لیکن وہ لوگ کے جو یہ گمان نہ کریں، وہ لوگ کے جو برائیاں کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے یا ہم سے سبقت لے جائیں گے. یعنی یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو مشرکین ہیں، ان کے جو سردار ہیں، رسولوں کے مخالفین ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. سا ما یحکمون، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ہو کر رہے گا. यानी जो आदमी भी ख़ास तौर पे अल्लाह का आशिक बनेगा, अल्लाह से मुलाकात को अपना मकसूद बनाएगा, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। होता यह है कि जब हम दुनिया को अपने ऊपर बहुत गालिब कर लेते हैं, दुनिया की फतह को, दुनिया के गलबे को बहुत सवार कर लेते हैं, तो उससे फिर मसले पैदा होते हैं। कहा कि जो अल्लाह को और आखरत को अपना सबसे बड़ा मसला बना ले, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, चाहे दुनिया में कामयाब हो चाहे ना हो। यानी वाक्या आता है ना कि एक साहब जो है वो नेज़ा उनकी गर्द जो है वो सीने के आर पार हुआ, तो उनके मुँह से जैसे एक नारा सा निकला कि फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो असल कामयाबी तो ये है ना कि इंसान अल्लाह की राह में अपनी जान दे दे। इसीलिए हम सूरह सफ़ में आखिर में पढ़ेंगे आगे जाके कि कुरान मजीद कहता है कि असल मकसूद क्या है, वो तो जन्नत है। वह उखरा तो हिब्बूनहा, एक दूसरी चीज़ है जो तुम्हें बहुत पसंद है, नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। कहा कि अपने पर्सपेक्टिव को ठीक रखो, अगर अल्लाह तुम्हारा मकसूद है तो अल्लाह की जो मुद्दत है, अल्लाह का वादा है, वो तो होकर रहेगा। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सि, और जिस किसी ने मेहनत की, कोशिश की, मुजाहदा किया, तो उसने अपने भले के लिए मेहनत की। इन्नल्लाह लगनीयुन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से मुस्तगनी है। ख़ासतौर पर यह मक्की सूरत है, इसमें ज़ाहरी बात है अभी जिहाद भी सैफ़ का कोई मौका ही नहीं है, तो यहाँ जो जद्दोजहद क्या है वो ज़ाहरी बात है दीन झेलना है, मुश्किलात को झेलना है और दीन पर साबित कदम रहना है। सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा कहा करते थे कि इन रजुल लयुजाहिदु, कि एक आदमी है जो जिहाद करता रहता है, वमा ज़रब यौमन मिनद दहरी बिसैफिन, हालांकि उसने पूरी ज़िंदगी में कभी एक दिन भी तलवार नहीं उठाई होती। तो ये भी जिहाद है, इंसान शैतान से जो जिहाद कर रहा है, बातिल कुव्वतों से जो जिहाद कर रहा है, और जो लड़ रहा है समाज से उसके रवाज के ख़िलाफ़, तो ये भी जिहाद है। वल्लज़ीना आमनू वआमिलु सालिहाति लनुकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम वलनज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और वो लोग के जो ईमान लाएँ और नेक आमाल करें, तो हम ज़रूर भी ज़रूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयाँ, और हम ज़रूर भी ज़रूर उनको देंगे उनके बेहतर से बेहतर आमाल की जज़ा जो ये करते रहे। यानी हम उनको सबसे अच्छा बदला देंगे, यानी अगर वो रले मिले आमाल करते रहे तो हम जो अजर देंगे, हम जो नवाजेंगे, तो सबसे खूबसूरत चीज़ों को सामने रख कर उसके मुताबिक इनको नवाजेंगे। वसीन अलसान अभी वालदही हुसना, और हमने इंसान को ताक़ीद की है उसके वालदेन के हवाले से हुसन सलूक की, भलाई की। लेकिन वह इन जा हदा का लितुशरी का भी माँ ले सल का भी इल्म फला तुते हुमा, अगर वो तुमसे ज़ोर करें, तुम्हारे साथ जिद्दोजहद करें कि तुम मेरे साथ किसी ऐसी हस्ती को शरीक ठहरा लो जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, तो इनकी बात ना मानना। वालदेन के बहुत हुकूक हैं, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्लाह ने अपने हक के बाद वालदेन का तस्करा किया है। लेकिन ये बात वाज़ेह कर दी कि उनके साथ हुस्ने सलूक करना है, उनके साथ अच्छा मामला करना है, लेकिन अगर वो शिर्क और कुफर पर मजबूर करें तो उनकी इताअत नहीं करनी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक फार्मूला दे दिया कि ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी उस मामले में जिससे में खालिक की मासियत आती हो। तो हम इताअत करते हैं, यानी शौहर की इताअत बीवी करती है, वालदैन की इताअत जो है वो औलाद करती है, असातिज़ा की हम इताअत करते हैं, अब कोई इंसान का कोई मजहबी पेशवा होता है उसकी इताअत करते हैं, हुक्मरानों की इताअत करते हैं। लेकिन कहा कि जहाँ शिर्क और कुफ्र और अल्लाह की मासियत आ जाए वहाँ किसी की इताअत नहीं करनी। इलैया मर्जिउकुम, बेशक तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फ़ुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो मैं तुम्हें जितला दूंगा जो कुछ के तुम अमल करते रहे। इस तरह मैंने कहा है ना कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई थी, यानी सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी वालिदा थी, उन्होंने मरण व्रत रख लिया, उन्होंने कहा कि जी मैं तो जान दे दूंगी, और बकायदा उन्होंने कहा, यह रिवायत तिर्मिज़ी में मौजूद है, कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अलैसा कद अमरल्लाहु बिल बिर, तुम बड़े बनते हो कि तुम बड़े नेक हो और पैगंबर पर ईमान ले आए हो, क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया नेकी का, वफा का? और वल्लाहि ला अतअमु तआमन वला अशरबु शराबन, कि अल्लाह की कसम अब ना मैं कोई निवाला खाऊंगी ना कोई पानी का घूंट पीऊँगी, हत्ता अमूत औ तकफुर, यहाँ तक कि मैं जान दे दूँ या ये है कि फिर तुम कुफर करो, इनकार कर दो, अल्लाह का इनकार कर दो, पैगंबर का इनकार कर दो। तो ज़ाहरी बात है उनसे कहा गया, सैयदना साद इब्ने अबी वक़ास ने भी कह दिया अपनी वालदा से कि वालदा चाहे आपकी 100 जाने हों और एक एक करके 100 जाने निकलें, तब भी मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा और कुफर नहीं करूँगा। والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے, آخرت میں بھی بہت اونچے مرتبے کے لوگوں کے شریک ہوں گے, وحسن اولئک رفیقا, اور اس دنیا میں بھی. اب چونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ کٹ رہے ہیں نا, نوجوان کٹ رہے ہیں اپنے گھرانوں سے, اپنے والدین سے کٹ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں سے کٹ رہے ہیں, تو ان سے کہا کہ دیکھو تم نے کس سے کٹ رہے ہو تو جڑ کس سے رہے ہو, تم محمد رسول اللہ سے جڑ رہے ہو, تم جو ہے وہ اقابر صحابہ کے ساتھ جڑ رہے ہو, تو تمہارے لیے تو کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, اور جب اس کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے, ستایا جاتا ہے, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تو لوگوں کی طرف سے آزمائش کو ایسے سمجھنے لگتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یعنی وہی بات کہ یعنی لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے, پریشانی آئے, تو اس سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. حالانکہ لوگوں کی طرف سے تکلیف کتنی آئے گی, وہ اتنی میکسیمم آئے گی کہ انسان کی جان چلی جائے, لیکن اللہ کا عذاب تو ایسا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ ولئن جاء نصر من ربک, اور اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے رب کی مدد آئے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, اس وقت یہ کہے کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی جب تکلیف آئے تو اللہ کی راہ چھوڑ دے, اور جب مزے آئیں یا کوئی فائدہ ملنے لگے تو ساتھ شریک ہو جائے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے جو کچھ کے جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ تو ضرور بے ضرور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون ہے جو حقیقی ایمان لانے والے ہیں اور کون ہیں جو جعلی لوگ ہیں منافق. پہلے کہا تھا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں, تو مومنین سچے ہیں اور منافقین جھوٹے ہیں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل ایمان سے, اتبعوا سبیلنا, دیکھو ہماری راہ چلو, ہماری پیروی کرو, ولنحمل خطاياكم, اور تمہیں ڈر ہے نا کہ بھائی آخرت ہوگی, پیشی ہوگی, اور تمہیں ان گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا, تو بھائی ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. دنیا میں بھی تم ہماری ذمہ داری ہو, ہماری ولایت میں ہو, ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں, معاشی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں, دشمنوں سے تمہیں بچاتے ہیں, تو جب جہاں تمہارا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں تو وہاں بھی اٹھا لیں گے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء, اور کہا کہ ہرگز بھی وہ ان کی خطاؤں کا کچھ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں, انہم لکاذبون, یہ جھوٹے لوگ ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, ان کو ضرور بے ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھانے ہیں اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے ہیں. یعنی جو ان کی پیروی کریں گے, ان کی بات مان لیں گے, ان کی بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے, لیکن چونکہ یہ ان کو ٹیمپٹ کرنے والے ہیں, یہ ان کو گمراہ کرنے والے ہیں, تو ان کی گمراہی کا بھی ایک حصہ اپنے اوپر اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور بے ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا جو کچھ یہ جھوٹ بناتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی نے آخری بات کر دی نا کہ بھئی جو بھی جان مظلومانہ ماری جاتی ہے تو اس کا جو ظالم جو اس نے قتل کیا ہے اس پر تو اس کا وبال جاتا ہی ہے, لیکن آدم کے پہلے بیٹے پر بھی اس کا وبال جاتا ہے. اسی لیے یہ سوال جو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے, تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو آدمی مر گیا اسی وقت اس کو بلا کے سامنے اس کا حساب کتاب کر کے اس کو جنت یا جہنم میں بھیج دیا جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ نہیں, اس دنیا کو چلایا جائے خاص مدت تک, اس کے بعد ایک مرتبہ حساب ہو, کیونکہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا ان کی ریپرکشنز بہت دور تک جاتی ہیں. اچھے اعمال اس کا فیضان بھی بہت دور تک جاتا ہے, برے اعمال اس کی گمراہی بھی بہت دور تک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سارے کو سمیٹ لیں, یعنی وہ جو ساری خیر ہے اس کو بھی سمیٹ لیں اور جو سارا شر ہے اس کو بھی سمیٹ لیں, اور پھر آخر میں ریکنسائل کریں. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور بھی ضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے, افتراء کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, اب انبیاء کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تاریخ میں کئی مرتبہ ہو چکا, رسول آئے, ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا, تعذیب دی گئی, لیکن پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور اہل ایمان کو بچا لیا اور ظالموں کو اور مشرکوں کو برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف تو وہ ان میں مقیم رہے 1000 برس مگر 50 سال کم, یعنی 950 برس رہے. اور یعنی بتانا مقصود یہ کہ تم تو ابھی 3-4 سال میں بہت پریشان ہو گئے ہو, ہمارے تو ایسے بھی نبی تھے جن کی طویل عمریں ہوتی تھیں اور 950 سال تک انہوں نے یہ ساری باتیں سہیں. فاخذہم الطوفان وہم ظالمون, تو اب مختصر کیا ہے بات کو, انہوں نے دعوت دی, قوم نے انکار کر دیا, مذاق اڑایا, تمسخر کیا, تو الٹیمیٹلی کیا کیا, कि हमने उनको पकड़ लिया, उनको आ लिया एक तूफ़ान ने और वो ज़ालिम थे। फ़न जैना हो असहाब सफ़ीना, तो हमने बचा लिया उनको और उन लोगों को जो उनके साथ अहले ईमान कश्ती में थे। व जालना है आयत लिलआलमीन, और हमने उनके सारे वाक़े को बना दिया निशानी तमाम जहान वालों के लिए। वह इब्राहिम इस क़ाल कौमी अब्दुल्लाह व तकू, और इब्राहिम जब कहा उन्होंने अपनी कौम से कि अल्लाह की बंदगी करो और उसी से डरो। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझ रखते हो, अगर तुम जानते हो। इन्नमा ताबदून मिन दूनिल्लाहि औसानन व तखलुकून इफ़का, कि ये जो तुम अल्लाह के सिवा जिन हस्तियों की पूजा कर रहे हो ये तो बुत हैं, और तुमने ख़ुद से एक झूठ और एक फरेब जो है उसका ढोंग रचाया हुआ है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इन्नल्लज़ीना ताबदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा वअबुदूहु वश्कुरू लह, बेशक वो हस्तियाँ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो ये तुम्हारे बारे में किसी रिस्क का इख्तियार नहीं रखते, तो अल्लाह ताला से रिस्क मांगो, अल्लाह से ढूंढो कि अल्लाह तुम्हें रिस्क दे और उसी की बंदगी करो और उसी का शुक्र बजा लाओ। इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़बा उममुम मिन क़ब्लिकुम, और अगर तुम झुटलाओगे तो तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों ने झुटलाया। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल के ज़िम्मे नहीं है मगर साफ साफ खुला खुला पहुँचा देना। अवलम यरू कैफ युब्दिल्लाहुल खल्क सुम्म युईदुह, क्या ये देखते नहीं, गौर नहीं करते कि कैसे अल्लाह ताला मखलूकात को पैदा करता है फिर वो उसका इयादा करेगा। यानी पैदाइश तो उनके सामने है, इसी तरीके से कौमों की तारीखें भी उनके सामने हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला एक कौम को पैदा करते हैं, उठाते हैं, सरफराज करते हैं, फिर बर्बाद कर देते हैं, एक और कौम को उठा देते हैं। इन नज़ालिका अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। कुल सीरू फिल अर्ज़, ए नबी इनसे कहिए ज़मीन में चलो फिरो। फंज़ुरू कैफ बदा अल खल्क सुम अल्लाह युनशिउ नशअत अल आखिरा, और फिर देखो कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया पहली मर्तबा मखलूक को, और फिर अल्लाह ताला ही है जो दोबारा उनको उठाएगा, दूसरी नशअत करेगा उनकी। यानी कौमों को देख लो, फसलों को देख लो, मुर्दा ज़मीन पड़ी होती है, अल्लाह उसको ज़िंदा कर देते हैं। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, जिसको चाहता है वो अज़ाब देता है और जिस पर चाहता है रहम करता है। वह इलैहि तुक़लबून, और तुम्हें उसी की तरफ पलटाया जाएगा। वमा अंतुम बिमोजिज़ीन फ़िल अर्दी वला फ़िस समा, और तुम अल्लाह को ना ज़मीन में थका सकते हो, आजिज़ कर सकते हो, ना आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए ना कोई हिमायती है और ना कोई मददगार। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइही उलाइका यईसू मिन रहमती, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ़र किया अल्लाह की आयात का और उससे मुलाकात का, यही लोग हैं जो मेरी रहमत से नाउमीद हो गए हैं। वह उलाई का लहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। हालांकि अल्लाह की रहमत तो बेपनाह है, और ख़ुद उसने लिख दी है ये बात कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पे सबकत रखती है। फ़मा कान जवाब कौमी ही इल्ला अन क़ालु क़त्लूहु अव हर्रिकूहु फ़अंजाहुल्लाहु मिनन नार, तो कहा कि उनकी जो कौम को कोई जवाब नहीं बन पड़ा इनके मुकाबले में, मगर ये कि उन्होंने कहा कि उक्तलूहु, इनको कत्ल कर दो, अव हर्रिकूहु, या इनको जला दो, फ़अंजाहुल्लाहु मिनन नार, तो अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम को बचा लिया उस आग से। इन नफ़ी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमी युमिनून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखती। क्या निशानियां हैं? एक ये कि आजमाइश लाजिम है, तकलीफ़ ज़रूर आएगी, और दूसरी बात यह है कि इसमें अल्लाह के दीन के हवाले से जो भी ताल्लुकात होते हैं, जो अलायक होते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सैयदना इब्राहिम ने भी सबसे पहले अपने वालिद के सामने दीन की दावत दी और उनसे ऐलान बरात किया, तो अब ए मुसलमानों तुम्हें भी जो है अब जो एक टेम्पटेशन सामने आ रही है, दबाव सामने आ रहा है तुम्हारे वालदैन, तुम्हारे जो है कबीले वालों की तरफ से, उसको भी रजिस्ट करो। और तीसरी बात यह है कि नजात यकीनी है, इस दुनिया में रसूलों के जो साथी हैं, आखरत की नजात तो सबके लिए गारंटीड है, लेकिन रसूल और उनके साथियों के लिए दुनिया की भी नजात और दुनिया का गलबा भी यकीनी होता है। वक़ाल इन्नमा तख़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानन, और सैयदना इब्राहिम ने कहा कि तुम अल्लाह के सिवा जिन हस्तियों को बुत बना के पूछते हो। मवद्दतम बैनकुम फिल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मवद्दत और मोहब्बत का ज़रिया है। ये जो आयत है इसके कई मतलब लिए गए हैं। एक मतलब तो ये है कि ये जो तुम बुतों को पूछते हो ये इस वजह से नहीं है कि वाक़ईतन तुम ये समझते हो कि ये कोई नाफे हैं या ज़ार हैं। असल मसला ये है कि चूंकि एक रीत चली आ रही है और इन बुतों को पूजना, इससे तुम्हारे अंदर एक कोहिजन पैदा हो गई है, इससे अंदर एक बॉन्ड पैदा हो गया है, और जैसे एक एक असबियत पैदा हो गई है, इसकी वजह से तुम इनको पूजते हो और इसकी वजह से तुम जो है इनकी पूजा करते हो, वरना तुम्हें भी मालूम है कि ये कुछ नहीं दे सकते। जदीद जो भी थ्योरीज हैं बहुत सी, जो डरखाइम एक बहुत मशहूर सोशोलॉजिस्ट था, उसने भी यही कहा था कि रिलीजन का जो असल मफाद है ना, वो ये कि वो एक सोशल बॉन्ड फराहम करता है, एक ग्लू फराहम करता है, बस एक सोशल फैक्ट है, इसका आसमान से कोई ताल्लुक नहीं। तो कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये जो बुतों को पूजते हो, ये बस इसी मफाद से है। या दूसरा ये है कि ये चूँकि तुम्हारे बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्गों ही की तुमने पहले मूर्तियाँ बनाई, उनको पूजने लगे, तो बस ये दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें उनसे जो कि मोहब्बत थी, इस बुनियाद पर तुमने उनको पूजना शुरू कर दिया, इनकी मूर्तियाँ बना ली। लेकिन क्या होगा, सुम्म यौमल क़ियामत यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, फिर क़्यामत के दिन तुम में से बाज़ की तकफीर करेंगे, इनकार करेंगे और एक दूसरे पर लानत करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं बार बार कि एक दूसरे पर तबर्रा कर रहे होंगे, और अल्लाह कुरान मजीद में आयत आगे आएगी कि अल अखिल्लाउ यौमैज़िन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि क़्यामत के दिन जो आपस में बड़े गर्म जोश दोस्त होंगे, खलील होंगे, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के। जो मुत्तकीन हैं उनकी मोहब्बतें बरकरार रहेंगी, बाकी जो कुफार और मुशरिकीन और बदकार, उनके आपस के बॉन्ड जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। वमाकुमुन्नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वमालकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फ़ामन लहू लूत, तो उन पर ईमान ले आए लूत जो उनके भतीजे थे। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ अब हिजरत करके जा रहा हूँ। इन्नहू वल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो ज़बरदस्त है और कमाल हिकमत वाला है। वहबना लहू इसहाक, और हमने उनको नवाज़ा इसहाक व याकूब, और याकूब अता किए यानी पोते अता किए। व जालना फ़ी ज़ुर्रियतिहिन नबूवत वल किताब, और हमने उनकी औलाद में नबूवत और किताब रख दी। व आतैनाहु अजरहू फ़ी दुनिया, और हमने दुनिया में भी उनको उनका अच्छा बदला दिया। व इन्नहु फ़िल आख़िरत लमिनस सालिहीन, और आख़िरत में भी ये नेकोकारों में से होंगे। अब यहाँ अहले मुसलमानों को बताया जा रहा है, अहले ईमान को बताया जा रहा है कि देखो तुम कुर्बानियाँ दे रहे हो, तुम जो है अपना घर बार भी हो सकता है तुम्हें छोड़ना पड़े, हिजरत हबशा का वक्त भी करीब आ रहा था, उसके बाद हिजरत मदीना भी करनी थी। तो कहा कि देखो इब्राहिम ने अपना घर बार छोड़ा तो अल्लाह ने कैसे नवाज़ा, उनको औलाद दी, पैगंबरों पैगंबर बनाया उनकी औलाद में, उनको नबूवत दी, उनको किताब दी, उनका दर्जा दुनिया में कितना बढ़ाया। तो अगर तुम अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ोगे या कुर्बानी दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़ाया नहीं करेगा। वलूतन इसकाल लिकौम ही इन्नकुम लतातून अलफाहिशत मा सबककुम बिहा मिन अहदिम मिन अलआलमीन, और लूत को भी हमने भेजा जब कहा उन्होंने अपनी कौम से कि बेशक तुम जो है एक बहुत बड़ी बेहयाई का इर्तकाब करते हो, ऐसी बेहयाई कि जो जहान वालों में तुमसे पहले किसी ने नहीं की। लगता है कि जैसे इस फेले शनी के पायनियर ये लोग थे, सबसे पहले इन्होंने इस बदकारी को ईजाद किया। अइन्नकुम लतातून अर्रिजाल व तक्तऊन अस्सबील, बेशक तुम मर्दों के पास आते हो अपनी शहवत पूरी करने के लिए और तुम रास्ता रोकते हो या राह मारते हो। एक तो मतलब ये है कि भाई उनके यहाँ एक तो ये सेक्सुअल करप्शन थी और दूसरा वो डाका जनी भी करते थे, लूट मार भी करते थे, और दूसरा इसका मतलब ये है कि तुम जो राह जनी करते हो इसका मतलब ये है कि फितरत की राह को रोकते हो। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जज्बा रखा है वो इसलिए रखा है ना ताकि इंसान की नस्ल आगे चले। तो कहा कि अगर तुम यानी इज्तमाही तौर पर कोई कौम ये फैसला कर ले कि अपनी शहवत को मर्दों से ही पूरा करना है तो फिर नस्ल कैसे आगे चलेगी, और गोया राह ही बंद हो जाएगी तमद्दुन की। व तू नफ़ी नादी कुमुल मुनकर, और तुम ये जो बदकारी का शनी अमल है ये गोया खुलेआम करते हो, गोया मजलिसों में करते हो। फ़मा कान जवाब कौमी ही इल्ला अन क़ालू तिना बिआज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस सादिकीन, तो उनकी कौम का कोई जवाब नहीं था मगर ये कि उन्होंने कहा कि ठीक है ले आओ अल्लाह का अज़ाब अगर तुम सच्चे हो। यानी कोई कोई दलील नहीं है, कोई इस्तदलाल नहीं है, बल्कि हठधर्मी है कि ठीक है अज़ाब ले आओ, हम तो ये काम नहीं छोड़ेंगे। क़ाल रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफ्सिदीन, सैयदना लूत ने दुआ की कि ऐ रब मेरे तू मेरी मदद कर इन शरीर लोगों के मुकाबले में। वलम्मा जात उसूना इब्राहिम अबिल बुशरा, अब ये वो वाक्या है जो कई जगह आ चुका है कि जब हमारे पैगंबर पहुँचे इब्राहिम के पास बशारत लेके, बेटे की बशारत लेकर, और साथ ये भी कहा कालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रिया, कि हम तो उस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं यानी जो कौम लूत है। इन्ना अहला कानू ज़ालिमीन, बेशक उस बस्ती के लोग ज़ालिम हैं, गुनाहकार हैं। काल इन्ना फ़ीहा लूता, उन्होंने कहा कि उसमें तो लूत भी हैं। कालो नहनु आलम बिमन फ़ीहा, उन्होंने कहा हमें खूब वाकिफ़ है, हम खूब जानते हैं कि उनमें कौन है लूत और उनके साथ जो अहले ईमान है हम उनको बचा लेंगे। لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور نجات دیں گے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی، مگر ان کی بیوی کو، یعنی بیوی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ ولما ان جات رسولنا لوطن سی ابہم وضاق ابہم ذرا، اور جب وہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس پہنچے، ہمارے پیامبر جب ان کے پاس پہنچے لوط کے پاس، تو وہ بہت غمگین ہو گئے اور ان کا سینہ بھنچنے لگا، ان کو لگا کہ اب خیر نہیں ہے اور یہ گویا میرے مہمانوں کی بے حرمتی کریں گے۔ وقالو لا تخ وضاق ابہم ذرا وقالو لا تخف ولا تحزن، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ڈرو مت اور غم مت کرو، انا منجو کا و اہل کا علم راہ تک کانت میں الغابرین، ہم بچا لیں گے تمہیں بھی اور تمہارے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ کانت میں الغابرین، انا منزلون اعلیٰ اہل حاضل قریت رجزم من السماء بما کانو یفسکون، بے شک ہم ان بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں اس سبب سے کہ یہ فاسق لوگ تھے، بدکار لوگ تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا بِهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ رکھی ہے ان کی ایک بہت واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کی بستیاں جو اوندھی ہوئی بستیاں ہیں جو ہے وہ صدوم اور عمورہ کی، ان کے اوپر سے یہ آتے جاتے ہیں، تو جن کو عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار بنو، آخرت میں اللہ سے اجر کے طالب بنو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، فکذبوہ فآخذتہم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو انہوں نے جھٹلایا سیدنا شعیب کو تو ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، جھرجھری نے، اور پھر وہ صبح کے وقت اپنے گھر میں اوندھے ہو کر پڑے رہے۔ وعادوں و سمود وقت طبیہ لقم مسا کی نہم، اور قوم عاد کو اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور تم پر کھل چکا ہے حال ان کے مسکنوں کا، یعنی تم ان کے مسکنوں کے پاس سے گزرتے ہو، تجارتی شاہراہوں پر ان کی الٹی ہوئی بستیاں تم دیکھتے ہو۔ وزیہ لہم الشیطان اعمالہم، اور ان سب کے لیے مزین کر دیا تھا شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے شرک کو، کفر کو، بدکاریوں کو، فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین، اور پھر روک دیا ان کو اللہ کی راہ سے، پیغمبروں کی راہ سے، اور ویسے وہ بہت ہوشیار تھے، بہت دیکھنے والے تھے، یعنی دنیا کی ان کو بہت سمجھ تھی، بہت ورلڈلی وائز تھے، ہر لحاظ سے معاملات ان کے ٹھیک تھے، بس یہ ہے کہ سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ ان کو نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجیے جدید جو مغرب ہے وہ ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ سمجھ کسی کو نہیں، اور جو ہے وہ آسمانوں میں بھی سفر کر رہے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو بہت سمجھدار ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، آسمان کی بھی خبر ہے اور زمین کی بھی خبر ہے، بس نہیں خبر تو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ ہے جس نے بنایا ہے اور جو حساب لے گا اور جو مواخذہ کرے گا۔ تو کہا کہ ویسے بہت سمجھدار تھے لیکن یہ بات ان کے پلے نہیں پڑی۔ وقارون و فرعون و حامان، اور اللہ نے ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو۔ ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات، اور آئے موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، اب یہ تین طبقات ہیں، قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے، فرعون جو ہے وہ پولیٹیکل جو مائٹ ہے اس کا انچارج تھا، حامان سمجھ لیجیے ملٹری پاور ہے اس کا انچارج تھا، اور قارون جیسے وہ جو ایک معاشی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا نمائندہ تھا۔ بہت پہلے 50s میں ایک کتاب چھپی تھی سی ڈبلیو رائٹ کی کہ دا پاور ایلیٹ، اس نے اپنے زمانے میں امریکہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ ایک پاور ایلیٹ ہے جو امریکہ پر بھی گورن کر رہی ہے، پوری دنیا پر بھی گورن کر رہی ہے، اور اس نے یہی تین طبقات بتائے تھے کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک وہ ایلیٹ ہے، ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور ایک جو کیپٹلسٹک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو فائنینشیل معاملات جن کے ہاتھوں میں۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی تین باتیں بیان کی، قارون، فرعون اور حامان۔ ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض، اور بے شک آئے ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وما کانوا سابقین، اور وہ نہیں تھے ہم سے سبقت لے جانے والے، ہم سے جیتنے والے نہیں تھے، فکلاً اخذنا بذنبہ۔ اب یہ قرآن مجید کی بہت ہی جامع آیت ہے، اس میں تقریباً تمام جو عذاب کی صورتیں تھیں جن کی وجہ سے پرانی قوموں کو انکار جو ہے تباہ کر دیا گیا، ان کو اجمالاً ذکر کر دیا، فکلاً اخذنا بذنبہ، تو یہ جو سارے لوگ تھے ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا इनमें से वो भी है जिस पर हमने जो है वो पथराव वाली हवा भेजी, यानी कौम लूत पर। वह मिनहुम मन अखत हु सैहा, और कोई ऐसे थे जिनको हमने पकड़ा चिंगाड़ से, कौम आद थी, कौम समूद थी और अहले मदियन थे। वह मिनहुम मन खसफना बिल अर्ज़, और वो भी हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, यानी जो है जो कारून था उसके साथ ये मामला हो गया। वह मिनहुम मन अग़रक़ना, और वो भी हैं जिनको हमने गर्क कर दिया, आले फ़िरौन को हमने गर्क कर दिया। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और अल्लाह ताला तो उन पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि यही लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते थे। मसलुल लज़ीना तख़रू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के सिवा और हस्तियों को अपना हिमायती बनाया हुआ है, ऐसी है कि जैसे मकड़ी की मिसाल। इत्तख़ज़त बैता, उसने अपना घर बना लिया, उसने जाला जो है वो तन लिया। व इन अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, और सब घरों में सबसे भुरभुरा सबसे बोदा घर जो है वो तो मकड़ी का घर है, उसका जाला है, यानी एक हाथ आप मार दें तो ख़त्म हो जाता। तो कहा कि ये जो अल्लाह के सिवा किसी हस्तियों पर एतमाद है वो ऐसे ही है, वो बैतुल अनकबूत है, वो रेत की दीवार है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। लव कानू यालमून, काश के ये जानते। इन अल्लाह यालम मा यदून मिन दूनिहि मिन शै, बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है जिन हस्तियों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है, जानता है, ज़बरदस्त है, चाहे तो एक लम्हे में इनको हलाक कर दे, लेकिन हकीम है, मोहलत देता है, रस्सी दराज करता है। व तिलकल अमसाल नुद्रिबुहा लिन्नास, और इसी तरीके से हम मिसालें लोगों के लिए खोल कर बयान करते हैं। वमा याक़िलुहा इल्ला आलिमून, लेकिन इसको इससे अक़ल से वही काम लेते हैं, वही समझते हैं जिनको इल्म है, जिनको समझ है। खलक अल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक, अल्लाह ताला ने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ। इन नफी ज़ालिक लआयतल लिल मुमिनीन, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। उतलु मा उहिया इलैक मिनल किताबि वाकिमिस्सला, ए नबी, जो वही किया गया है आपकी तरफ किताब में से उसकी तिलावत करते रहिए। वाकिमिस्सला, और नमाज कायम रखिए, यानी हर वक्त आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन ख़ासतौर पर जो वक्त है ये बहुत सख्त है, ख़ुद भी ये कीजिए, जो आपके साथ जमात है उसको भी ये ताकीद कीजिए। जो हमने पीछे पढ़ा ना, वलन तजीदा मिन दूनी ही मुल्तहदा, आप अल्लाह के सिवा कुरान के सिवा कोई जाए पनाह नहीं मानेंगे। तो अल्लाह से जुड़ जाएँ, कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज को कायम करें, और चाहे कुरान की तिलावत हो चाहे नमाज हो, दोनों का मफाद क्या है? दोनों का मफाद अल्लाह की याद है। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरी बातों से। तो यहाँ ये कहा है कि रोकती है, यानी ये नहीं कि रोक देती है, रोकती है जिस तरह इंसान को उसके वालदैन रोकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर आदमी जिसको वालदैन रोके तो वो रुक जाए। तो कहा है कि नमाज में ये ताकत है, कुव्वत है, अगर ये अपनी स्पिरिट के साथ पढ़ी जाए और मुनाफिकीन की तरह ना पढ़ी जाए कि ला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कि नमाज में आते हैं कसमसाते हुए और नमाज में भी अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा। तो अगर अपनी स्पिरिट के साथ पढ़ी जाए तो रोक देती है। एक साहब के बारे में अल्लाह के नबी से कहा गया कि इन्न फुलानन युसल्ली लैल, और फलां साहब है रात को नमाज़ पढ़ते हैं, फ़ैज़ा असबाह सरक, और जब सुबह होती है तो चोरी करने लगते हैं। तो इन्हीं परेशानी हो गई कि ये क्या मामला है। तो आपने कहा कि सयन हा हुमा तकूल, अगर तुम कहते हो ऐसा ही है कि वो नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो अन करीब ये नमाज़ उनको रोक देगी, और ऐसा ही होता है। यानी आमतौर पर हमारे यहाँ भी ये होता है, किसी आदमी को आपने देखा खुदा ना खास्ता वो शराब पीता है या और कोई बुरे काम करता है लेकिन नमाज भी पढ़ता है, तो हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि उसको नमाज से भी हटाया जाए। तुम्हारी नमाज का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा है, इसका शराब भी पिए नमाज भी छोड़ दो। हालांकि उल्टी बात है, असल बात यह है कि नमाज पढ़ना ये एक हुक्म है, ठीक है, और शराब ना पीना ये दूसरा हुक्म है। तो भाई एक आदमी एक हुक्म पर चल रहा है, एक पर नहीं चल रहा, तो बजाय इसके कि आप कहें कि भाई एक काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है करते रहो दूसरा भी करो, हम उल्टी लोगों को मत देते हैं कि चूंकि तुम एक काम नहीं कर रहे हो दूसरा भी छोड़ दो। तो यहाँ पर यही कहा गया कि भाई नमाज भी जो है उस तरह की चीज़ें हैं इंसान को रोक देती है। वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह ताला की याद तो सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि बाकी तमाम इबादात भी अल्लाह की याद के लिए मशरू हैं। नमाज भी क्या है, अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो सही बैन सफ़ा वल मरवा है और ये जो रमी जमरात है और ये जो तवाफ़ बैतुल्लाह है ये किस लिए है, इकामत ज़िक्रिल्लाह, ये अल्लाह की याद को कायम करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आखरत में अल्लाह की रज़ा, और अल्लाह की रज़ा रिजवान मिन अल्लाह अकबर, ये एक्सप्रेशन दो जगह आया है, रिजवान मिन अल्लाह अकबर वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, ظاہری بات ہے انجام کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز وہ ہے, اور اللہ کی رضا کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے. تو کہا وہ ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اس لحاظ سے بھی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم, اور ظاہر جس کو اللہ یاد کرے محبت سے التفات سے, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب نے کہا نا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے. کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے. تو کہا کہ ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور دیکھو اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو, مجادلہ مت کرو, مگر اس طریقے سے جو بہت خوبصورت ہو. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ظالم ہیں ان میں سے. یعنی مراد ہے کہ جدال ان لوگوں سے کرو کہ جو معتبر لوگ ہیں اور جو بھلے طریقے سے کرتے ہیں, اور جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں تو کہا کہ ان کو چھوڑ دو. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد, اور تم یہ کہو کہ ہم تو ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا. ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں تورات پر بھی انجیل پر بھی. والہنا والہکم واحد, اور ہمارا الہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. وکذلک انزلنا الیک الکتاب, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری. فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ, تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن ہاؤلاء من یؤمن بہ, اور ان لوگوں میں, ان مشرکین مکہ میں, ان بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نافرمان ہیں, ناشکرے ہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لرتاب المبطلون, اور آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست لوگ مزید شک میں پڑ جاتے. یعنی آپ تو امی تھے اور آپ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے, کوئی اوریٹر نہیں تھے, کوئی مناظرے کرنے والے آدمی نہیں تھے, کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے. تو کہا کہ آپ تو اس طرح کی مذہبی روایت سے واقف نہیں تھے, آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے. کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ اور شک میں پڑ جاتے کہ بھائی انہوں نے جو ہے خود سے لکھ لیا ہے, اور ان کو شوق چڑھا ہے معاذ اللہ جو ہے نبوت کا اور لوگوں پر سرداری کرنے کا. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف ہے. ایک بڑے عالم امام کے پاس ایک صاحب گئے اور بات بات میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو بالکل جاہل ہوں اور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, اور دیکھیں اللہ کے نبی بھی تو امی تھے. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے اپنا بڑا شرف ظاہر کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بدبخت آدمی, اللہ کے نبی کے لیے امی ہونا ان کا شرف تھا, اور ہم آپ کے لیے جاہل ہونا وہ شرف نہیں ہے, وہ تو ہلکی بات ہے. بتا ہمیں تو کہا گیا کہ ہم علم حاصل کریں قرآن و حدیث کا اور باقی چیزوں کا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, بلکہ یہ تو واضح روشن نشانیاں ہیں, آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. یعنی اس قرآن کی گواہی تو اہل کتاب کے علماء دے سکتے ہیں, ان کے سینوں میں جو کتاب محفوظ ہے وہ اس کے ساتھ بالکل کورسپونڈ کرتی ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر بے انصاف اور ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیت من ربی, اور یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں ظاہر ہوتی, کوئی حصہ معجزہ کیوں نہیں ہوتا. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی کہہ دیجئے تمام نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی بھی نبی بائی چوائس جو ہے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا, وہ تو اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو نشانی آتی ہے. وانما انا نذیر مبین, اور بے شک میں تو ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ قرآن مجید سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کو کہ کوئی واضح نشانی نہ دی گئی ہو جس پر لوگ ایمان لاتے ہوں. اور مجھے جو نشانی دی گئی ہے, مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے فزیکل چیزوں کو دیکھ کر ایمان لانے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں خاص حوالے سے, اور وہ جو چیز ہوتی بھی ہے وہ پیغمبر کے ساتھ چلی جاتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی دریافت ہو بھی جائے تو وہ لاٹھی ہے, وہ لکڑی ہے, ٹھیک ہے. سیدنا موسیٰ کا جو عصا تھا اور جدی بیضہ تھا وہ ان کے ساتھ ہی تھا. سیدنا مسیح کی جو نفخ تھی, جو پھونک تھی, اور سارے ان کی جو معجزے تھے وہ ان کی ذات کے ساتھ چلے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ خالدہ دیا گیا ہے, ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا, جس کی تاثیر ہمیشہ باقی رہے گی. تو کہا کہ اس قرآن کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت ہے؟ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون, ان نفی ذالک الرحمتوں و ذکرہ لقومی یؤمنون، بے شک اس میں یہ رحمت ہے، اس قرآن میں رحمت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، وہ جو کچھ قرآن مجید کی آیات کو استعمال کرتے ہیں ان کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کے اس میں یہ آیت بھی ہے، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. دیکھیے اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ بھائی ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. تو بھائی قرآن مجید کافی ہے، حدیث و سنت کی ضرورت نہیں. اب خود سوچیے آپ کے کانٹیکسٹ کیا ہے. یہاں یہ بات ہی زیر موضوع نہیں ہے کہ بھائی پیغمبر حجت ہے کہ نہیں ہے، پیغمبر اپنی ذات میں اتھارٹی ہے یا نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حصی معجزہ دکھاؤ. تو کہا کہ بھائی حصی معجزہ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوتا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ ہے، اس آیت کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کافی ہے. کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ، اے نبی کہہ دیجیے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ کے جو باطل پر جھوٹ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. وہ یستعجلونک بالعذاب، اور اے نبی یہ آپ سے جلدی جلدی مانگتے ہیں عذاب کہ بھائی عذاب لے کیوں نہیں آتے. ولولا اجل مسمل لجاءہم العذاب، اور اگر پہلے سے ایک متعین مدت طے نہ ہوئی ہوتی تو عذاب بھی آ جاتا. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ عذاب آنے میں دیر اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریوولٹ نہ ہو جائے، کوئی بغاوت نہ ہو جائے عذاب کے مقابل میں. یہ تھوڑی ہے، وہ تو اللہ نے ایک وقت طے کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. ولیأتینہم بغتۃً وہم لا یشعرون، اور وہ ضرور بھی ضرور ان پر آئے گا اچانک اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، اور اے نبی آپ سے جلدی سے یہ عذاب مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا. بھائی وہ دنیا کا عذاب آئے نہ آئے، موت تو ہر وقت کھڑی ہے نا، اور موت آتے ہی گویا جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، وہ دن کے جس دن عذاب گھیر لے گا ان کو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فایا فاعبدون، اب یہ گویا ہجرت حبشہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، تو گویا میری ہی بندگی کرنا. یعنی اصل میں کیا ہے کہ بندگی میری ہی کرنا. اس بندگی کے لیے اگر تمہیں اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا. کل نفس ذائقۃ الموت، اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، لوگ مار دیں گے، یا کسی اور جگہ پر جائیں گے وہاں پتہ نہیں رزق ملے نہ ملے، کس طرح کے حالات ہوں. کہا کہ بھائی ہر دی نفس کو موت تو آنی ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، ایسی جنت جس کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. یعنی تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ دیں، پتہ نہیں کہیں ٹھکانہ ملے نہ ملے. کہا کہ ہم تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیں گے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، سب اچھا اجر کن لوگوں کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہیں جائیں گے اپنا گھر در چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنی کھیتیاں چھوڑ کے، تو کیا بنے گا. وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی چوپائے، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقھا وَإِیَّاکُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَوْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو وہ اللہ جو پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں نہیں دے سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے تمہارے کام پہ لگا دیا سورج اور چاند کو، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، तो इस एतराफ़ के बाद कहाँ ओंधे हुए जाते हो? अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह तआला ही है जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से उसका रिज़्क़ कुशादा करता है, और जिसके लिए चाहता है माप तोल के देता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को जानने वाला है। वलैन सअलतहुम मन नज़ल मिन समाई मान फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बादि मौतिहा लयक़ूलुन्नल्लाह, और ऐ नबी अगर आप इनसे पूछें कि कौन है जो आसमान से पानी उतारता है और उसके ज़रिए मौत ज़मीन को उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा कर देता है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ नबी कह दीजिए कुल शुक्र कुल तारीफ़ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरहुम ला याकिलून, लेकिन इनकी अक्सरियत अक़ल नहीं रखती। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि लहुल खल्क वल अमर, कि खल्क भी उसके लिए है अमर भी उसके लिए, तो दोनों का एतराफ़ कर रहे हैं मुशरिकीन। ये भी मान रहे हैं कि पैदा भी अल्लाह ने किया आसमान ज़मीन को, और ये भी मान रहे हैं कि तदबीर अमर और रिस्क भी वही दे रहा है। वमा हज़िल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, और दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर जो है जी का बहलाना, खेल और तमाशा। व इन्ना दारल आखिरत लहिल हयावान, और आखिरत का घर ही है जो असल में ज़िंदगी है और ज़िंदा रहने की जगह है। लव कानू यालमून, काश के वो जानते। फैज़ा रकीबू फिलफुल के दाबुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इन लोगों का मामला ये है कि जब किसी कश्ती में जाते हैं और बीच में महजूफ है और वो कश्ती डोलने लगती है, तो क्या करते हैं? एक अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं अपने लिए, उसके लिए अपनी इताअत को ख़ास करते हुए। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, और जब अल्लाह उनकी पुकार सुन लेता है और नजात दे के उनको खुश्की पर ले आता है। इज़ाहुम युशरिकून, तो फिर अल्लाह के साथ शरीक करने लगते हैं। ये कुरान मजीद में बार बार आ चुकी है बात। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ, ताकि जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसकी नाशुक्री करें और कुछ दिन और मज़े कर लें। फसौफ़ यालमून, तो अनकरीब जान लेंगे। अवलम यरौ अन्ना जालना हरमन आमिना, क्या ये गौर नहीं करते कि हमने उनको एक बहुत ही हरम, ऐसा हरम अता किया है जो अमन वाला है, एक महफूज जगह हमने उनको दी है। मुझे तख़त्तफ़ उन्नास मिन हौलिहिम, और बाकी लोग दिन दिहाड़े दाएं बाएं से उचक लिए जाते हैं। अब मुशरिकीन मक्का को उनके सरदारों को उभारा जा रहा है कि देखो इस हरम की बरकत से तुम्हें एमनेस्टी हासिल है, तुम्हारे काफ़िलों पे कोई हाथ नहीं डालता, वरना बाकी दूसरे काफ़िलों को दिन दिहाड़े इधर उधर से उचक लिया जाता है। अफ़बिल बातिल युमिनून वबी नेमतिल्लाह यकफुरून, तो क्या अल्लाह बातिल पर ईमान रखते हो और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हो? वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबन अव कज़्ज़ब बिलहक़ लम्मा जाअ, और उससे बढ़ के ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ बांधे, ये कहे कि अल्लाह ने किसी को बीवी या बेटी या बेटा बनाया है, या कज़्ज़ब बिलहक़, या जब हक उसके पास आए, पैगंबर आए, तो उसका इनकार कर दे, उसको झुटला दे। लम्मा जाअ, जब वो उसके पास आए। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वर लिलकाफिरीन, क्या जहन्नुम ठिकाना नहीं है ऐसे लोगों का कि जो काफिर हैं, जो मुनकर हैं? वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और बेशक वो लोग कि जो हमारे दस्तों में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हम उन पर अपनी राहें खोल देंगे। वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला खूब कारों के साथ है। यानी बिल्कुल क्लाइमेक्स में आके बात बता दी कि जो लोग भी जिहाद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नाकाम नहीं होंगे। और एक तो खारिज में राहें खुल जाएंगी और दूसरी अंदर के वसवसे भी जाते रहेंगे। या अय्युहल लज़ीन आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें एक बातनी नूर और बसीरत भी दे देंगे। क्योंकि कहा कि जो हमारे राह में कोशिश करते रहते हैं, एक वक्त आता है कि हम उनके सीने को खोल देते हैं और खारिज की रुकावटें भी ख़त्म कर देते हैं। सूरत रूम मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, गुलिबत रूम फ़ी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़्ज़ सिनीन। ये सूरह रूम है, मक्की सूरत है। इसके शुरू में एक वाक़या बयान हुआ है। इससे पहले अर्ज़ किया गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत हुई, उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी जो आपस में भिड़ती रहती थी, एक रोमन अम्पायर थी और एक पर्शियन अम्पायर थी, और इनके दरमियान एक सिरा, एक जो है वो झगड़ा चलता रहता था। कभी एक गालिब आता, कभी दूसरा गालिब आता। तो तकरीबन समझ लीजिए कि 614 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को 4 साल हुए थे, तो जो है वो जो मजूसी हैं, जो पर्शियन अम्पायर थे, उसने हमला किया रोमन अम्पायर पर और उनको बहुत बुरी तरह मार लगाई और हेकल को भी बर्बाद कर दिया। वहाँ से जो एक मुकद्दस सलीब जिसको वो कहते थे कि सैयदना मसीह को इस पे सूली दी गई है, वो भी साथ ले गए और मगलूब कर दिया उनको। अब जाहिरी बात है कि मुशरिकीन थे, जो मजूसी थे वो मुशरिक थे, और जो जाहिरी बात है कि रूमी थे वो नसारा में से थे, अहले किताब में से थे। तो मुसलमानों की जो हमदर्दियाँ थीं वो जाहिरी बात है कि रूमियों के साथ थीं, और मुशरिकीन की जो थीं वो उनके साथ थीं जो ईरानी थे, मजूसी थे, मुशरिक थे। और फिर जाहिरी बात है वो फप्तियाँ भी चुस्त करते थे कि भाई ये क्या बात है, हम ये अगर कहते हैं कि अल्लाह इनके साथ है तो वो लोग किताब वाले हैं वो मغلوب हो गए, और जो मुशरिक हैं इनके बारे में कहते हैं कि अल्लाह के बागी हैं वो गालिब आ गए। तो कहा कि गुलिबत रूम फ़ी अदनल अर्ज, करीब की सरजमीन में फ़िलिस्तीन में जो रूमी हैं वो मغلوب कर दिए गए, वहम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून। अब एक बशारत दी जा रही है कि इस मغلوبियत के बाद अनकरीब ये गालिब हो जाएंगे। बशारत दी जा रही है कि बज़ाहिर सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन अनकरीब दोबारा रूमी जो है वो फ़ारसियों पर गालिब आ जाएंगे। कब, कितने अरसे में, फ़ी बिज़ सिनीन, गिनती के चंद बरस। बिज़ कहते हैं अरबी में तीन से लेकर नौ तक के अदद को। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, सारा इख्तियार इससे पहले भी इसके बाद भी अल्लाह ही के पास है। व यौमैज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह, और वो दिन के जब वो जो अय्याम हैं जब दोबारा से रूमी गालिब आ जाएंगे, ये वो दिन होगा कि जिस दिन अहले ईमान बहुत खुश होंगे, बहुत खुशियाँ बनाएंगे अल्लाह की मदद की बुनियाद पर, अल्लाह की मदद से। तो फिर जब ये हुआ ना कि ऐसा हो जाएगा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई इब्ने खल्फ़ जो एक मुशरिकीन का सरदार था उनसे शर्त कर ली, कि 10 ऊँटों की शर्त कर ली कि भाई देखो अगर यानी 3 या 4 साल में, उन्होंने कहा कि 3 साल में अगर जो है वो रूमी गालिब आ गए तो फिर तुम्हें देने होंगे ऊँट, अगर ना आए तो फिर मैं दूँगा। तो अल्लाह के नबी को जब पता लगा तो आपने कहा कि भाई बिज़ का लफ्ज़ जो है ज़्यादा के लिए बोला जाता है, तो ऐसा करो कि मुद्दत को बढ़ा दो, 9 साल कर दो, और फिर जो है वो ऊँटों की तादाद भी बढ़ा दो। तो फिर 9 साल उन्होंने कर दी और फिर ऊँटों की तादाद भी 100 कर दी। उस वक्त ज़ाहिर बात है कि इस तरह की जो शर्त होती है उसको हराम नहीं करार दिया गया था। तो फिर यही हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो तकरीबन लगभग जो है 3 हिजरी में, यानी समझिए 9 साल बाद, यानी अगर जो है 614 में ये हुआ तो फिर 9 साल के बाद जो है वो उन्होंने जो है रूमियों ने हमला किया ईरानियों पर और फतेहयाब हो गए। तो कहा कि वही दिन थे कि जो ज़ाहरी बात है कि बदर के भी दिन थे, यानी उन्हीं दिनों में बदर का मारका भी हुआ। तो दो खुशियां अहले ईमान को मिल गईं, एक तो यही खुशी मिली कि भाई जो है दोबारा से रूमी जो अहले किताब थे वो गालिब आ गए, और उन्हीं दिनों में बदर का मारका हुआ उसमें भी अल्लाह की मदद आई और मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का मौका हुआ। तो फिर जब ये मामला हुआ तो उबई इब्ने खल्फ़ शायद मर गया था, उसके वारिसों से फिर 100 ऊँट लिए गए, और चूंकि उस वक्त तक इसकी हुरमत का हुक्म आ गया था किमार की, तो फिर अल्लाह के नबी ने उसको सदका कर दिया था उन तमाम ऊँटों को। बिनस्सिल्लाह यंसुरु मन यशा, कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसकी मदद करता है, वहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो ज़बरदस्त है और रहम करने वाला है। वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, ला युख्लिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। वलाकिन्ना अक्सर नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत जानती नहीं। यानी इस तरह के मामलात में भी कि कौम कौन सी कौम गालिब आएगी, कौन सी मगलूब होगी, इसमें भी अल्लाह की बात कही हुई अटल है, पूरी होकर रहती है। तो बाकी जो और वादे किए जा रहे हैं पैगंबरों से और मुशरिकीन को बताया जा रहा है कि तुम मगलूब होगे और तुम ख़ायब व खासिर होगे, तो वो भी पूरे होकर रहेंगे। यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयात दुनिया, ये जानते हैं दुनिया की ज़िंदगी के भी ज़ाहिर को। वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, और ये आखिरत से गाफिल है। अगर दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को जान लेते तो कभी ये रवैया इख्तियार न करते, कभी इस दुनिया पे न रींचते। दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है? दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये मखलूक है, और दूसरी हकीकत यह है कि ये फ़ानी है। तो कहा कि जो तो वाक़ेतन दुनिया को जानता है तो ये दो हकीकतें उसके सामने आ जाती हैं, फिर ज़ाहिरी बात है वो दुनिया पे फरेफ्ता नहीं हो सकता, फिर वो दुनिया को सामने रख के आखिरत को भुला नहीं सकता। इसीलिए हमारे कई अकाबरीन ने कहा ना कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़े आकिल और सबसे बड़े दानिशवर के पास ले जाओ, तो मैं जाहिदों के पास ले जाऊँगा। यानी वो लोग जो दुनिया से बेरगबती इख्तियार करते हैं, सबसे ज़्यादा समझदार लोग वो हैं। तो कहा कि ये लोग क्या हैं, तो दुनिया की ज़िंदगी के भी ज़ाहिर को जानते हैं और आखिरत से गाफिल हैं। और हम ये तफक्करू फ़ी अनफुसिहिम, क्या ये अपने खुद अपने वजूद में अपने इर्द गिर्द गौर नहीं करते? मा खलकल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, कि जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान है मगर हक के साथ। व अजलिम मुसम्मा, और एक ख़ास मुद्दत तक के लिए। यानी ये बिल्कुल बातें जुड़ी हुई हैं। अगर ये दुनिया बामकसद जो है तख्लीक है तो फिर लाजिम है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, और फिर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जहाँ इस दुनिया वाली खामियाँ ना हो, जहाँ जुल्म ज्यादती ना हो, जहाँ ये ना हो कि जहाँ इंसाफ ना हो सकता हो। तो कहा कि जब आप ये मान लेते हैं कि ये हक के साथ बनाया है, फिर आपको ये भी मानना पड़ता है कि ये टाइम्ड है, यानी ये एक दिन आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। वइन्ना कसीरन मिन अन्नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफिरून। और कहा कि लोगों की अक्सरियत वो है जो अपने रब के मुलाकात का इनकार करती है, उसकी मुनकिर होती है। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो क्या ये ज़मीन में चलत फिरत नहीं करते कि वो देखें कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। कानू अशद्द मिन्हुम कुव्वतन व आसारुल अर्ज़। वो इन मुशरिकीन मक्का से कहीं बढ़ के ज़ोर वाले थे, और वो व आसारुल अर्ज़, और उन्होंने ज़मीन को भी इनसे ज़्यादा जोता, ज़मीन को काश्त किया। व आमरूहा अक्सर मिम्मा आमरूहा, और उन्होंने ज़मीन को जैसा आबाद किया वो इनसे कहीं ज़्यादा था। इनकी तो कोई इस्टेब्लिशमेंट सी नहीं है, इनकी तो बहुत प्रिमिटिव सी जो है वो तहजीब थी। जबकि पहले लोग जो है महलात बनाते थे, बड़ी बड़ी उनकी आलिशान इमारतें होती थी और बड़ी फसलें काश्त करते थे। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, और उनके पास भी उनके रसूल आए वाज़ह निशानियाँ लेकर। फ़मा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने रसूलों का इनकार कर दिया, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। तो क्या अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया तो क्या अल्लाह ज़ालिम थे? कहा कि नहीं, अल्लाह ज़ालिम नहीं थे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये लोग खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म ढाते थे। सुम मकान आक़िबतल्लज़ीना असाउसूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वकानू बिहा यस्तहज़ियून। फिर यही अंजाम हुआ उन लोगों का जिन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, उनका अंजाम बुरा हुआ इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयात को, अल्लाह की आयात को झुटलाया और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, अल्लाह ही है जो पहली मरतबा जिसने मखलूकात को बनाया और फिर वही इसका इयादा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम सबको उसी की तरफ लौटाया जाएगा। वयौम तकूमुस सआतु युबसिसुल मुजरिमून, और वो दिन के जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन ये मुजरिम बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएंगे। आज तो बड़ी बातें कर रहे हैं, इतरा रहे हैं, उस दिन इनकी कोई पेश नहीं चलेगी। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाउ व कानू बि शुरकाइहिम काफिरीन, और उनके ये जो शरीक हैं अल्लाह के साथ, जिनको कहते हैं कि ये शरीक हैं, वो उनकी सिफारिश करने वाले नहीं होंगे, और बल्कि वो तो हो जाएंगे अपने शरीकों से मुनकिर, इनकार ही कर देंगे। व यौम तकूमुस सआतु यौमइज़िन यतफर्रकून, और वो दिन जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग मुतफर्रिक हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ गरोहों में उनको बाँट दिया जाएगा। फ़हम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। सबसे बड़ी डिवीज़न क्या होगी? एक डिवीज़न होगी कि एक तरफ असहाबुल यमीन है, अहले जन्नत है, एक तरफ असहाबुश शिमाल है, अहले जहन्नुम। फिर अहले ईमान में बहुत से जो है वो मरातब होंगे और अहले जहन्नुम में बहुत से मरातब होंगे। तो कहा कि फ़हम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, बस वो लोग के जो ईमान लाए, उन्होंने नेक आमाल किए, वो होंगे बागात में और वहाँ बहुत मज़े कर रहे होंगे, वो बिल्कुल मगन होंगे, मस्त होंगे, उनकी आओ भगत हो रही होगी। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना व लिक़ाइल आखिरा, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को झुटलाया और हमारी मुलाकात का इनकार किया, ये लोग होंगे। फ़ाउलाइक फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, ये वो लोग होंगे जिनको अज़ाब में पकड़ा जाएगा, पकड़ के लाया जाएगा, कैद करके लाया जाएगा। फ़सुबहानल्लाहि हीना तुमसून, बस अल्लाह की तस्बीह बयान करो उस वक्त के जब शाम होती है। अब शाम में ज़ाहिर बात है असर की नमाज़ भी है, मग़रिब की नमाज़ भी है। वहीना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो, सुबह फजर की नमाज़ है। वलहुल हम्दु फिस्समावाति वल अर्ज़, और उसी की हमद है जो है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वाशियन, और पिछले वक्त रात के वक्त भी, इशा के वक्त भी। वहीना तुज़हिरून, और जब जुहर का वक्त होता है। तो एक लिहाज से आप देख लीजिए कि पाँचों नमाज़ें उनके औकात का यहाँ जिक्र है। अगरचे ये पाँच नमाज़ें इस वक्त मशरू नहीं हैं, लेकिन कहा गया कि इन तमाम औकात में अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की तहमीद करो। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य, वही निकालता है जिंदा को मुर्दा से और निकालता है मुर्दा को जिंदा से, इसका मफहूम बताया जा चुका। व युहयिल अर्ज़ बाद मौतिहा, और वो ज़मीन को उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा कर देता है। व कज़ालिका तुख़रजून, इस तरह मुर्दा ज़मीन होती है, अल्लाह बारिश बरसाता है और ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। तुम भी पड़े होगे ज़मीन के अंदर, तुम्हारे ज़र्रात ज़मीन में होंगे, हम एक पुकार लगाएंगे, तुम ज़मीन से ज़िंदा होकर निकल आओगे। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से और फिर तुम इंसान बन गए और ज़मीन में फैल गए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, और ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी जान से जोड़ा बनाया। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसमें तस्कीन हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत और रहमत रख दी। ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है ये भी गैर मामूली अल्लाह की निशानी है। इन नफी ज़ालिक आयात लिकौमी यतफक्करून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ध्यान करते हैं। वमिन आयाति खल्कु समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम वालवानिकुम, और बेशक ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, और जो इख्तलाफात हैं जो गुनागुन और रंगा रंगी है इनकी बोलियों में और इनके रंगों में। इन नफी ज़ालिक आयात लिलआलमीन, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझने वाले हैं। यानी ये जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंगों के लोग पैदा किए हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग पैदा किए हैं, कहा कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। आजकल भी बहुत ज़ोर है मल्टी कल्चरलिज़म का, प्लूरलिज़म का, तो कहा कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये तफव्वुक का और बरतरी का ज़रिया नहीं बनने चाहिए कि भाई मेरा रंग जो है वो गोरा है, मैं बरतर हूँ, और इसका रंग जो है वो स्याह है, ये कमतर है। जब मैं अरबी बोलता हूँ तो मैं बरतर हूँ, और ये फारसी बोलते हैं तो ये कमतर है। और आपको मालूम है कि मुसलमानों के अंदर भी इस तरह की जो है वो तहरीकें चलनी शुरू हो गई, कि अरबों के अपने अंदर जो है शुरू में ही हो गई थी, कुछ सदियों में ही शुरू हो गई थी, कि अरबों ने अपनी बरतरी का ऐलान कर दिया। उसके मुकाबले में बाकी लोगों ने शौबिया तहरीक चढ़नी शुरू हो गई, अपने अपने ग्रोहों ने खड़ा होना शुरू कर दिया। फिर अगर आप देखें ना जो वज़्र हदीस हुआ है, जो हदीसें घड़ी गई हैं, अगर आप उस लिटरेचर का मुताला करें तो आपको साफ लगेगा कि अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपनी ज़बान की फजीलत में रिवायतें घड़ी गई, अरबों की फजीलत में, और आजमियों की जो है फजीहत में, सूडानियों की मजम्मत में, अजमियों को गिराने के लिए अरबी की फजीलत में, फारसी की मजम्मत में, फिर फारसी के हक़ में, इस तरह की रिवायतें आपको मिल जाएंगी जाली हदीस की किताबों में कि भाई अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो फारसी में वही नाजिल करते हैं, जब नाराज़ होते हैं तो अरबी में वही नाजिल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की जो है, कहा कि इसको तकसीम का ज़रिया क्यों बनाते हो, ये तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, इसको तुम जो है एक दूसरे पे तफव्वुक का ज़रिया क्यों बना रहे हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने वाज़े कर दिया कि ये तो तआरुफ़ का ज़रिया है। ला फ़ज़ल लि अरबियिन अला अजमियिन वला लि अजमियिन अला अरबियिन वला लि अस्वदा अला अहमरा वला लि अहमरा अला अस्वदा इल्ला बित्तक्वा कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। जो अल्लाह के यहाँ तफव्वुक है वो तकवा की बुनियाद पर है, बाकी ये तो तआरुफ़ का ज़रिया है। तो कहा कि ये अल्लाह की निशानी है। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैली वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली, और ये उसकी निशानी है कि तुम सोते हो रात और दिन में, और तुम तलाश करते हो उसका फजल। रात ख़ास है सोने के लिए, दिन ख़ास है रिज़्क की तलाश के लिए। इन नफी ज़ालिक लआयात लिकौमी यस्मऊन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफ़ं व तमा, और बेशक उसकी निशानियों में से है कि वो तुम्हें दिखाता है बिजली को, कभी खौफ से कभी उम्मीद से। यानी जब बिजली कड़कती है तो किसान को उम्मीद पैदा होती है बारिश की, लेकिन अंदेशा भी होता है कहीं जब बिजली जो है खेत पे ना आ पड़े, इसको जला ना दे। इसी तरीके से जब जो है यही बिजली होती है, यही जो है वो बारिश होती है जो रहमत का सबब बनती है, और यही कड़क है और यही पानी है जो किसी के लिए अज़ाब का ज़रिया बन जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तेज़ बारिश होती थी और हवा चलती थी, आपके चेहरे का रंग मुतगैर होने लगता था। तो पूछा किसी ने, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि बाकी लोग तो खुश होने लगते हैं कि बारिश बरसेगी, और जो है वो ज़ाहिरी बात है सहरा में बारिश की अहमियत बहुत होती थी, तो आपको क्या हो जाता है। कहा कि मुझे ये डर लगता है कहीं मेरी कौम पर भी अज़ाब का वक्त तो नहीं आ गया। तो कहा कि अल्लाह ताला दिखाते हैं जो है दिखाते हैं बिजली को, और कभी उम्मीद के साथ कभी खौफ के साथ। व युनज़िलु मिनस समाई माअन, और वही है जो आसमान से पानी उतारता है। फयुहयी बिहिल अर्ज़ा बाद मौतिहा, फिर वो ज़िंदा करता है इसके ज़रिए ज़मीन को उसकी मौत के बाद। इन नफी ज़ालिक आयात लिकौमी याकिलून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो अक़ल से काम लेते हैं। वमिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्दु बिअम्रिह, और ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म पर खड़ा है, कायम है। इन अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, अल्लाह ताला ने थामा हुआ है आसमानों और ज़मीन को कि टलते नहीं हैं। अल्लाह ताला अपनी तवज्जो हटा दे, आसमान गिर जाएगा, ज़मीन फट जाएगी। सुम्मा इज़ा दाकुम दावतम मिनल अर्ज़ इज़ा अंतुम तख़रुजून, फिर जब वो तुम्हें पुकारेगा एक बारगी तो तुम निकलोगे ज़मीन से। ज़मीन पुकारेगा इज़ा अंतुम तख़रुजून, तो तुम ज़मीन से निकल के उसके सामने आ जाओगे। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, और उसी का है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के ज़मीन में है। आसमान में जो फरिश्ते हैं वो भी उसकी मखलूक हैं, ज़मीन में जो बंदे हैं वो भी उसी की मखलूक हैं। कुल्लुल लहू कानितून, और सारे के सारे उसके हुक्म बरदार हैं। फरिश्ते भी अल्लाह की उलूहियत में शरीक नहीं हैं, वो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। वहुवल्लज़ी यबदउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, और वही है जो पहली मरतबा पैदा करता है मखलूक को, और फिर वही है जो इसका इरादा करेगा। वह हुआ अहवनु अलैह, और ये उस पर बहुत आसान है। पहली मरतबा पैदा करना मुश्किल है कि उसको दोहराना मुश्किल है। आप पढ़ते होंगे ना, एक्सपीरियंस कर्व होती है। पहली मरतबा कोई आदमी काम करता है उसको टाइम लगता है, अगली मरतबा करता है उससे कम टाइम लगता है, तीसरी मरतबा करता है और कम टाइम लगता है। तो कहा कि भाई जिसने पहली मरतबा पैदा किया है उसके लिए इस अमल को दोहराना कोई मुश्किल थोड़ी है। वह हुआ अहवन वाली, और ये उस पर बहुत हल्का है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, और उसी की शान सबसे बुलंद है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वहुल अज़ीज़ुल हकीम, और वह ज़बरदस्त है कमाल हिकमत वाला है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम।